नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू गुप्ता अपने इस परछाई चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज मैं लेकर आई हूं अपने साथ अपनी पूरी टीम। जी हाँ, कक्षा 10वीं के छात्र जो न केवल उत्साहित हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए, बल्कि जिज्ञासु हैं आपको अपना परिचय देने के लिए। तो अब मैं आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी टीम से आपका परिचय करवा देती हूँ। और मैं ही क्यों, वे स्वयं ही अपना परिचय देंगे, है ना सौम्या? तो आप ही प्रारंभ करें।
जी अध्यापिका, प्रिय श्रोताओं, आज मैं सौम्या पाठक, कक्षा 10वीं की छात्रा, आप लोगों के सामने ततारा वामिरो कथा में वामिरो की माता का अभिनय करूंगी।
मैं तलत सैयद आज आप सबके समक्ष ततारा वामिरो में सूत्रधार हूँ।
मैं प्रज्ञा, कक्षा 10वीं की छात्रा, आज ततारा वामिरो में वामिरो का अभिनय करूंगी।
मैं वंशिका बेरीवाल, कक्षा 10वीं की छात्रा, आज ततारा वामिरो अभिनय में सूत्रधार हूँ।
मैं ध्रुव सिंह, आज ततारा वामिरो अभिनय में ततारा हूँ।
तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। इस द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था और इस विद्वेष को जड़ से उखाड़ देने के लिए एक युगल ने आत्मबलिदान दिया था। उसी युगल के आत्मबलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम हम सबको जोड़े रखता है और घृणा केवल दूरियां बना देती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति समाज के लिए अपने प्रेम तथा अपने जीवन तक का बलिदान दे दे, समाज उसे केवल याद ही नहीं रखता बल्कि उसके बलिदान को कभी व्यर्थ जाने नहीं देता। यही कारण है कि तत्कालीन समाज में मिसाल कायम करने वाले इस युगल को द्वीप के निवासी आज भी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं।
अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है।
सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गाँव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, जिसका नाम था ततारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु पूरे द्वीप वासियों की सेवा वह अपना कर्तव्य समझता। इसी कारण वह बहुत चर्चित था, सभी उसका आदर करते, मुसीबत के वक्त उसका स्मरण करते और वह दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों से भी उसे विशेष आमंत्रण आते थे।
उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपने सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता लोगों का मत था। बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी भी अलग ना होने देता, उसको दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी।
एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज डूबने को था, ठंडी बयारें आ रही थी, पक्षियों की सायकालीन चहचहाहटे शने शने शीन होने को थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को निहारने लगा। तभी कहीं से उसे एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो उसकी तरफ बहता हुआ आ रहा था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। वह उधर बढ़ने को विवश उठा जिधर से गीत अभी भी आ रहा था। वह आगे बढ़ता गया और अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एक टक समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। ये एक श्रृंगार गीत था।
उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंज सी गंभीर आकर्षक आवाज सुनी।
तुमने गाना क्यों रोक दिया?
पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो।
तुमने गाना क्यों रोका? गीत पूरा करो, सचमुच ईश्वर ने तुम्हें बहुत ही सुरीला कंठ दिया है।
यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, सच बताओ तुम कौन हो, लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं।
गाना क्यों रोका? गाओ ना।
धीरता की हद है, मैं जब से तुमसे परिचय पूछ रही हूँ और तुम हो कि बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ, आखिर क्यों, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम?
इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाने लगा।
मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ, तुम्हें देखकर चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो।
वामीरो।
वामीरो, वामीरो, यह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ?
नहीं, शायद कभी नहीं।
और वह लपाते की ओर भाग गई।
अरे सुनिए, मेरा नाम ततारा है, मैं कल इसी चट्टान पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा।
वामीरो घर पहुंचकर भीतर भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी चटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर बलिष्ठ किंतु बेहद शांत सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु वह एक दूसरे गांव का था तो इसलिए संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतः उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेश याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ।
किसी तरह रात बीती, एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, ततारा के लिए तो मानो पूरे जीवन की यह अकेली ही प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने से काफी पूर्व वे लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह प्रतीत हो रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामीरो ना आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता। फिर एक आकृति साफ हुई, कुछ और कुछ और। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा, सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी, वह अपने को छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिटक गई। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया, अंधेरा बढ़ गया। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल शब्दहीन।
दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेश ताकते रहे थे, बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। तपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का, दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे। वे नियमतः लपाती की उसी समुद्री किनारे मिलते, अफवाहें फैलती रही।
कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी ना था। उसकी व्याकुल आंखें तो सिर्फ वामीरो को ढूंढ रही थी। उसे पेड़ के पीछे से कोई जैसे ही झांकता दिखा, उसने थोड़ा करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। वामिरो के रुंदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां आ पहुंची और दोनों को एक साथ देखकर आग बबूला हो उठी।
निर्लज, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे रीति रिवाजों का ज्ञान है कि नहीं? तू जानता है ना कि तुम दोनों एक गांव के नहीं हो, फिर भी तूने मेरी बेटी से प्रेम किया?
अरे मेरी बात तो सुनिए आप।
बस मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें अनेक बार समझाने की कोशिश की कि जैसा तुम चाहते हो वह असंभव है, वह नहीं हो सकता, फिर भी तुम सुधरते ही नहीं। तुम्हारी हरकतें वैसी की वैसी हैं। अरे तुम्हारे अंदर संस्कार है कि नहीं?
यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहायता पर वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने तलवार में शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हांफ रहा था, अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वह सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी।
ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाटता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो गया। एक तरफ ततारा तो दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। वह झटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी।
वामिरो, वामिरो।
ततारा,
ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता।
इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंच जाती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु उसका कोई सुराग ना मिला।
दोस्तों, आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी है प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का ये मत था कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए थे, उनमें से दूसरा टुकड़ा लिटिल अंडमान कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारियों ने इस घटना के बाद दूसरे गांव में आपसी संबंध रखना शुरू कर दिया था। ततारा वामिरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए लिखी थी।
बहुत बढ़िया प्रयास था बच्चों, और आप सभी सराहना के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। ये प्रस्तुति एक अनोखी प्रस्तुति होगी जो सभी के लिए एक उद्देश्य लेकर आएगी। उम्मीद करती हूँ मित्रों, आप सभी को ये प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी, और यदि आप इससे संबंधित अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप मेरी बताई इस आईडी पर अपने सुझाव भेज सकते हैं, manjugupta.classes.blogspot.in। एक बार दोबारा सुन लीजिए, manjugupta.classes.blogspot.in। नई कहानी के साथ, नए पाठ के साथ, नए पात्रों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।